नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। वित्तीय वर्ष 2025-26 का राज्य का बजट कल पेश किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी प्रस्तुत करेंगे बजट। चालू रबी विपणन वर्ष में आगामी 1 अप्रैल से होगी गेहूं की अधिप्राप्ति। एफसीआई ने कहा, किसान उत्पादक संघों के माध्यम से भी होगी गेहूं की सरकारी खरीद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लोगों से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया। और रमजान का पवित्र महीना शुरू, आज पहला रोजा। अब समाचार विस्तार से। वित्तीय वर्ष 2025-26 का राज्य का आम बजट कल पेश किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी विधानसभा में आम बजट प्रस्तुत करेंगे। इससे पूर्व बजट सत्र के पहले दिन 28 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया गया, जिसमें राज्य का बेहतर आर्थिक विकास दर दर्शाया गया है। 4 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा और सरकार का उत्तर होगा। 5 मार्च को बजट पर सामान्य विमर्श होगा। 6 मार्च को बजट पर सामान्य विमर्श के साथ ही सरकार का उत्तर भी होगा। 28 मार्च तक चलने वाले सत्र में कुल 20 बैठकें होंगी। प्रदेश में गेहूं की सरकार द्वारा खरीद का कार्य 1 अप्रैल से शुरू होगा। भारतीय खाद्य निगम के बिहार क्षेत्र के प्रबंधक अमित भूषण ने बताया कि खरीद का कार्य 15 जून तक चलेगा। उन्होंने बताया कि विभिन्न किसान उत्पादक संघों से बढ़े हुए एमएसपी मूल्य पर गेहूं की खरीद की जाएगी। श्री भूषण ने बताया कि एफसीआई पूरे राज्य में गेहूं की खरीद के लिए 151 क्रय केंद्र स्थापित करेगा। इस अभियान के तहत गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 150 रुपए प्रति क्विंटल अधिक है। देश भर में जन औषधि जन चेतना सप्ताह की शुरुआत हो गई है। यह कार्यक्रम 7 मार्च तक चलेगा। इस अवसर पर नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के रथ और 10 अन्य वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री नड्डा ने सभी लोगों से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को एक जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया है।
जन चेतना के माध्यम से जो 7 मार्च हम जन औषधि दिवस मना रहे हैं और महत्वाकांक्षी लक्ष्य लेकर के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने तय किया है कि 2027 तक हम 25,000 केंद्र तक पहुंच जाएंगे। तो एक लंबी यात्रा हम कर पा रहे हैं। जहां हमने 80 केंद्रों से शुरू किया था, आज हम 15,000 केंद्रों पर खड़े हैं। हम 20,000 इस साल के अंत तक कर लेंगे और 25,000 हम अगले साल तक कर लेंगे।
इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाएं आम दवाओं की तुलना में 70-80% तक सस्ती हैं।
इस योजना के माध्यम से आज हमने देश भर में 15,000 के करीब ऐसे स्टोर्स खोले हैं, जिसमें आज आम नागरिकों को न केवल किफायती बल्कि गुणवत्तापूर्ण दवाएं और सर्जिकल इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं। 2,047 के करीब दवाएं और 300 से अधिक सर्जिकल उत्पाद आम जनता को बहुत ही कम दामों पर बाजार में जो ब्रांडेड दवाएं मिलती हैं उनसे यदि आप तुलना करें तो 70-80% कम दामों पर ये सब कुछ उपलब्ध हो रहा है, जिससे जनता की 30,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट, पोषण अभियान, ईट राइट इंडिया और खेलो इंडिया सहित कई पहल शुरू की है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य स्वस्थ जनजीवन सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात के संबोधन में मोटापे को कम करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता और सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मोटापा स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को सौर ऊर्जा से बिजली उपलब्ध कराएगी। योजना के तीसरे चरण में 1200 मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से फीडरों के माध्यम से किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि सौर ऊर्जा की मदद से कृषि फीडरों को बिजली मुहैया कराने से किसानों को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जून महीने तक प्रदेश के सभी किसानों को पटवन समेत अन्य कृषि कार्यों के लिए सौर ऊर्जा से बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा। केंद्रीय जांच अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कहा है कि आईआरसीटीसी घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद और प्रेमचंद गुप्ता ही हैं। सीबीआई ने नई दिल्ली की एक विशेष अदालत में इस मामले में अपनी दलीलें पूरी करते हुए कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। इधर इस मामले में लालू प्रसाद के वकील कल न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे। गौरतलब है कि यह मामला आईआरसीटीसी के दो होटलों का परिचालन अनुबंध एक निजी फर्म को देने में अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। वे सातवीं बार काउंसिल के अध्यक्ष चुने गए हैं। श्री मिश्रा का निर्वाचन निर्विरोध हुआ है। भाकपा माले ने आज पटना के गांधी मैदान में पार्टी कार्यकर्ताओं की सभा बुलाई है। पार्टी के राज्य सचिव कुणाल ने बताया कि इस सभा को महाजुटान का नाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि सभा में शामिल होने के लिए पार्टी महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और अन्य वरिष्ठ नेता पटना पहुंच चुके हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने कहा है कि स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी यूजी परीक्षा 8 मई से 1 जून तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 22 मार्च निर्धारित है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं और अब एक जरूरी सूचना।
आकाशवाणी का प्रादेशिक समाचार एकांश पटना हिंदी भाषा के लिए आकस्मिक समाचार संपादक और आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल तैयार करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 7 मार्च है। अधिक जानकारी newsonair.gov.in के वैकेंसी सेक्शन या प्रादेशिक समाचार एकांश पटना के एक्स हैंडल @airnews_patna से प्राप्त की जा सकती हैं।
और बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया है। आज पहला रोजा है। इससे पहले कल चांद देखे जाने के बाद तरावी की नमाज शुरू हो गई। लोग बड़ी संख्या में मस्जिदों में पहुंचे और विशेष नमाज तरावी अदा की। विशेष नमाज के लिए मस्जिदों और इबादतगाहों में खास इंतजाम किए गए हैं। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है और महीने के अंत में ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाता है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रमजान की शुरुआत पर मुस्लिम धर्मावलंबियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रमजान को लेकर बाजार की रौनक बढ़ गई है। सेवई, सूखे मेवे, फल और मिठाइयों की दुकान पर विशेष भीड़ देखी जा रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि मार्च के महीने में प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भागों के कुछ जिलों में लू चलने की संभावना है। विभाग के अनुसार इस महीने प्रदेश का अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री सेल्सियस तक होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, कैमूर और भागलपुर समेत 10 जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका है।
24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, भागलपुर, बांका, मुंगेर एवं सिवान जिलों के एक या दो स्थानों में मेघ गर्जन या वज्रपात होने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है।
रेलवे ने विभिन्न रेलखंडों पर नए रेल लाइन और पुलों के निर्माण से जुड़े कार्य के कारण आज से मई के प्रथम सप्ताह तक मेगा ब्लॉक लिया है। इसके कारण उत्तर बिहार से चलने वाली 70 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। वहीं 120 ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। रद्द ट्रेनों में पूर्वांचल एक्सप्रेस, जननायक एक्सप्रेस, देहरादून मुजफ्फरपुर राप्ती गंगा एक्सप्रेस, मौर्य एक्सप्रेस, बापूधाम एक्सप्रेस शामिल हैं। इधर होली के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने आज से राजेंद्र नगर, दानापुर, गया, मुजफ्फरपुर और सहरसा से नई दिल्ली के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के तत्वाधान में आज पटना में आनंदोत्सव मनाया जाएगा। सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ ने बताया कि आनंदोत्सव का उद्घाटन सिक्किम के पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद करेंगे। उत्सव में साहित्यकारों सहित कई हिंदी सेवियों को सम्मानित किया जाएगा। जाने माने अध्यात्म गुरु और आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता श्री श्री रविशंकर 6 मार्च को पटना आएंगे। 7 मार्च को वे औरंगाबाद और पटना में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। श्री श्री रविशंकर पटना में गांधी मैदान में आयोजित महासत्संग में हिस्सा लेंगे और पवित्र सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के अवशेषों का अनावरण करेंगे। उत्तराखंड के चमोली जिले के माणा गांव में हिमस्खलन की घटना के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। इस दुर्घटना में फंसे बिहार के 11 सहित 50 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। शेष 5 लोगों की तलाश जारी है। हादसे में 4 मजदूरों की मौत की भी खबर है। घटनास्थल पर सेना के जवान राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चला रहे हैं। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने पटना के सैदपुर स्थित एसटीपी का संचालन करने वाली 2 कंपनियों पर 1,09,60,000 रूपये का जुर्माना लगाया है। परिषद ने बताया कि दोनों कंपनियां पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही थी। मलजल शोधन के मामले में परिषद ने यह कार्रवाई की है। अररिया जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में विशेष छापेमारी अभियान चलाकर पुलिस ने कालाबाजारी का लगभग 20 क्विंटल चावल, भारी मात्रा में देशी शराब और मादक पदार्थ बरामद किया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। यह मैच दुबई में भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 2:30 बजे शुरू होगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह से जुड़ी खबर पर लिखा है, बिहार में सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,80,000 पहुंची, मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से कहा बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में अब होगा बदलाव। अखबार लिखता है 9 मंत्रियों के पास है वर्तमान में 2 जिले के प्रभारी मंत्री का दायित्व। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, 5 साल में 8 राज्य लोक सेवा आयोगों की 24 परीक्षाएं विवाद में, 43 लाख पर असर। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्तीय वर्ष 2025-26 का राज्य का बजट कल पेश किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी प्रस्तुत करेंगे बजट। चालू रबी विपणन वर्ष में आगामी 1 अप्रैल से होगी गेहूं की अधिप्राप्ति। एफसीआई ने कहा किसान उत्पादक संघों के माध्यम से भी होगी गेहूं की सरकारी खरीद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लोगों से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया। और रमजान का पवित्र महीना शुरू, आज पहला रोजा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।